सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदि प्रकरण में उस ज्ञानी के विषय में चर्चा कर रहे थे। कल चर्चा ये हुई थी कि उस ज्ञानी में क्रिया होती या नहीं। सिद्धांती ने कह दिया कि उसमें कोई क्रिया होती नहीं है। पूर्व पक्षी ने कह दिया कि हम तो ये देखते हैं अपने शरीर के रक्षण के लिए भरण के लिए भिक्षा करता है, आहार विहार करता है, घूमता है फिरता है, और जो पुण्य प्रद तीर्थ क्षेत्रों में गंगा स्नान इत्यादि क्या है वो करता हुआ दिखता है, तो क्रिया तो दिख ही रही है। तो आप जो कह रहे अक्रियत्व है उसमें, ये तो सिद्ध नहीं हो रहा है। उत्तर दिया उसका, ये तो लोगों की दृष्टि से क्या है उसमें क्रिया हो रही है, अपनी स्वदृष्टि से उसमें कोई क्रिया नहीं है। स्वदृष्टिया नहीं वास्तविक, अपने दृष्टि से उनके भीतर कोई भी क्रियाएं नहीं है, बस दूसरे के द्वारा क्या कल्पना हो रही है कि ये जो है गंगा स्नान कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, आहार विहार कर रहे हैं, ये तो लोगों की अपनी कल्पना है। वो तो स्वयं ना कुछ क्या है इच्छा करते हैं किसी क्रियाओं की, और न ही वो क्रियाएं करते हैं, बस देखने वाले वो कल्पना करते हैं, उन कल्पनाओं से उस ज्ञानी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपने बारे में कोई कल्पना करता है तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम है जो है, जो है सो है। जो सज्जन है उस सज्जन के बारे में किसी ने चोर की कल्पना की तो उस सज्जन की सज्जनता थोड़ा ना खत्म होगी। किसी की कल्पनाओं से उसके अपने स्वरूप का कोई बदलाव नहीं होता है, वो स्वरूप स्वरूप ही रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी ने अपने आप को मैं अक्रिय हूं, निष्क्रिय हूं, निष्कल हूं, मेरे में किसी प्रकार की कोई भी क्रियाएं कर्म इत्यादि नहीं है, ये अपने स्वरूप को उन्होंने इस तरह से क्या जान लिया है। ये जानने के बाद उसके विषय में कोई किसी प्रकार की कल्पना करे, भावना करे, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। कहेंगे नहीं दूसरे ने कल्पना करने पे तो उनके बात तो होगा ना, बाद हो अस्ति। तो कह दिया किसी की कल्पना करने से उसके स्वरूप का, उसके अपने निर्णय का बाद होता नहीं है। जैसे गुंज पुंज है, जो छोटे छोटे फल होते हैं, हाँ चलो, तो वो जो है गुंज, अब किसी की कल्पना से ये अग्नि है ऐसा कहने से क्या वो जलेंगे क्या? नहीं ना, उसमें कोई जलने की संभावना नहीं है। किसी की कल्पना से वो आग सिद्ध नहीं होती है, वो तो अपना उसका एक स्वरूप है गुंज का, तो उस स्वरूप में आग की कल्पना करने से वो आग सिद्ध होते नहीं है। इसी प्रकार किसी ने अन्य लोगों ने उनके ऊपर कल्पना करने पर वो धर्म को नहीं भजते हैं, अर्थात किसी ने कह दिया इसे करते हैं तो वो ऐसा नहीं है। इसलिए किसी अन्य की कल्पनाओं के द्वारा अन्य धर्म अपने में लागू होता नहीं, वो प्राप्त होता नहीं है। जैसे गुंज में अग्नि प्राप्त हुई नहीं, दूसरी से कल्पनाओं से वो अग्नि प्राप्त नहीं हो रही, इसी तरह दूसरी की कल्पनाओं से, दूसरी के आरोपों से उस ज्ञानी में क्या है ये क्रिया कर रहा है, ये धर्म कर रहा है, इतना आरोप करने मात्र से वो धर्म वो क्रिया उसको प्राप्त होती नहीं है। तो कह दिया इसके बाद कि फिर नहीं चलिए ये सब कुछ तो ठीक ही है, वो तो कोई है ही नहीं, किंतु वो जो उनके भीतर कोई इच्छा ही नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई फली इच्छा नहीं जगत से, वो अपने स्वरूप में है। किंतु वो तत्व साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन होना चाहिए। तो कहता है, उसका उत्तर देता है कि श्रवण मनन भी उसके लिए बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? श्रवण किसके लिए है? आत्मबोध के लिए है। अब उनको जो है ज्ञान होने के बाद उनको आत्मबोध तो हो चुका है, अर्थात श्रवण कर लिया है और बोध हो गया। बोध जिसको हो गया उसके लिए श्रवण करने की जरूरत नहीं है। तो कहेंगे कि नहीं, फिर जो है विक्षेप हटने के लिए कोई मनन करना चाहिए, संशय हटने के लिए, विक्षेप नहीं संशय, जिसके विषय में सुना है उसके विषय में जिसको संशय है वो मनन करे। ज्ञानी कहता है कि मैं जिसके विषय में, जिस आत्मा के विषय में सुना हूं, वो आत्मा ब्रह्म एक है, इसके विषय में मुझे कोई संशय ही नहीं है। जब मुझे संशय ही नहीं है तो उसके विषय में मनन कैसे कर सकता हूं? स्वाभाविक है, जिसको संशय है वो अपने आप ही क्या करता है, वो उस विषय में मनन करता है। ये जो कहा है इसके विषय में मुझे संशय हो रहा है, इसके विषय में मुझे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए, अपने आप ही उसके भीतर क्या है, ये भाव जगते हैं, इस तरह की क्रिया होती है। और वो उस संशय का निवारण करने के लिए वो मनन करता है, उसको बार बार उसका अलोड़न करता रहता है। किंतु वो ज्ञानी कहते हैं कि मुझे मेरे अपने स्वरूप के विषय में, मेरे अपने स्वरूप के विषय में मैंने जो सुना है कि ब्रह्म और आत्मा एक है, ये तो मैंने सब कुछ करके क्या है, निसंशय हो गया हूं, अब कोई मेरे में संशय नहीं है। जिसको संशय वो मनन करे, मुझे संशय नहीं है तो मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक हम लोगों ने कल किया था। आगे कहते हैं कि नहीं, चलो संशय ने विपर्य तो हो सकता है। मां भूतान श्रवण मनने 272 पेज नंबर में नीचे सबसे, मां भूतान श्रवण मनने, चलिए श्रवण और मनन नहीं है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बोध है और उनको संशय नहीं है, इसलिए श्रवण भी नहीं बनता है और उनके लिए मनन भी नहीं बनता है। किंतु विपर्य निराशार्थम, जो विपरीत भावना है उसके निराकरण के लिए, उस विपरीत भावनाओं को हटाने के लिए निधिध्यासनम कर्तव्यम, तो निधिध्यासन तो करना ही चाहिए। इति अशंका, इसी शंका हो रही है उनको कि निधिध्यासन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत भावना होने के कारण। तो कहते ऐसा नहीं है, देहादो आत्मबुद्धि लक्षणस्य विपर्यस्य अभावात्। उनको निधिध्यासन की भी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इस देहादियों में, देह में, मन में अथवा अन्य किसी वस्तु में, पुत्रादियों में क्या है, आत्मबुद्धि क्या है, नहीं है। अर्थात ये शरीर मैं हूं, शरीर में आत्मबुद्धि, यही आत्मा है शरीर, अथवा मेरा पुत्र आत्मा है, जो इत्यादियों में जो आत्मबुद्धि है वो बुद्धि ही नहीं है। किनमें? ज्ञानी में। और विपर्य का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जो नहीं है उसको क्या है, दूसरा मान लेना। जैसे रस्सी सर्प नहीं है किंतु उसको सर्प मानना, ये क्या हो गई? विपरीत भावना हो गई। इसी तरह ये शरीर आत्मा नहीं है किंतु ये शरीर को यदि हम आत्मा कह दे तो ये क्या हो गई भावना? विपरीत भावना हो गई। उस ज्ञानी में इस तरह की विपरीत भावना नहीं है, वो तो शरीर को शरीर ही कह रहे, आत्मा को आत्मा ही कह रहे, ये नहीं कि शरीर को आत्मा कह रहे, ऐसा नहीं है। उनका पक्का निर्णय है, उनको अनुभूति है, ये शरीर पंचमहाभूतों का है और ये पंचमहाभूतात्मक शरीर मैं नहीं हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं सत हूं, मैं आनंद रूप हूं। तो जो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप के विषय में उनको विपरीत भावना नहीं है। अपने स्वरूप के विषय में उनका क्या निर्णय है, कि मैं सत चित आनंद रूप हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, तत्त्वमसि अर्थात वो परमात्मा मैं हूँ, जो गुरु ने बताया था वो उनको निर्णय है, निश्चय है। इसी निश्चय के कारण क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये बोध होने के कारण क्या है, उनको विपर्य नहीं होता, अर्थात विपरीत भावना नहीं होती है। यदि विपरीत भावना होती तो उसको निधि ध्यासन की जरूरत होती, किंतु विपरीत भावना है ही नहीं, तो निधि ध्यासन करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। विपर्य अभावात तदापि न अनुष्ठेयम इति आह, विपर्य का अभाव होने के कारण अर्थात उन उस ज्ञानी के भीतर विपरीत भावना न होने के कारण निधि ध्यासन का अनुष्ठान उनके लिए बनता नहीं है। इसी विषय में चर्चा करते हैं 61वें श्लोक में। विपर्यस्तो निधिध्यासे विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानाम विपर्ययात् किं ध्यानाम विपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासम् देहात्मत्व विपर्यासम् किम् न कदाचिद् भजाम्यहम् न कदाचिद् भजाम्यहम् विपर्यस्तो निधिध्यासेत् किम् ध्यानम् अविपर्ययात्। अरे जिसको विपर्यास है अर्थात जिसको विपरीत भावना है, अर्थात जो शरीर को ही मैं मानता है, अर्थात शरीर में आत्म भावना है और आत्मा में शरीर भावना है, जिसको विपर्यास है, विपरीत भावना उल्टा भाव है, जिसका जो है वो न मान करके दूसरा ही कुछ मानता है अथवा अनुभव करता है, रस्सी में सर्प देखता है, इसी तरह जो है अपने आप को शरीर देखता है, मैं शरीर हूं, ये विपरीत भावना। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसा होता है वो निधि ध्यासन करे। किम ध्यानम अविपर्ययात्, अरे जिसको विपरीत भावना ही नहीं है उसको ध्यान करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, निधि ध्यासन करने की जरूरत नहीं है, विपरीत भावना ही नहीं है, जब विपरीत भावना नहीं तो ध्यान करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ कोई भावना यदि तैयार करनी है तो उसके लिए क्या है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, इतनी भावना करनी है, इतनी भावना के लिए कितना प्रपंच खड़ा करना पड़ता है, मेहमानों को बुलाओ, उनको भोजन खिलाओ, एक दूसरे के गले में माला पहनो, अक्षता डालो, हाँ एक दूसरे का जो है जो भी उसकी इति कर्तव्यता है पूर्ण करो, ये सब होने के बाद क्या है, भावना जगती है, अब ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है। और जिसकी ऑलरेडी भावना है उसके लिए करने की जरूरत है नहीं है। ये करना कब पड़ता है, जब नहीं है तब भावना करनी पड़ती है। अब आत्मज्ञानी को मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये तो भावना उसकी पहले ही क्या है, सब करके तैयार हो चुकी है, उन्होंने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, ये भावना उनकी पहले से तैयार है, तो उसके लिए फिर दोबारा करना पड़ेगा नहीं है। जिसको नहीं है उसको करना पड़ेगा। तो अब अज्ञानियों को ही क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इतनी भावना करने के लिए क्या है, निधि ध्यासन आदि श्रवण मनन आदि सब करना पड़ेगा, ये तो मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि मैं विपरीत भावना वाला है ही नहीं हूं। उस स्त्री पुरुष को क्या है, जैसे स्त्री के लिए अब मैं किसी अभी मैं वर्मा न होकर के मैं कौन हूं, अब शर्मा हूं। ये शर्मा भावना करने के लिए उसने सब कुछ कर लिया है, वरमाला पहना दी, लोगों को भोजन कराया, एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार किया, हो गई तैयार भावना। अब मैं शर्मा हूं ये भावना करने के बाद अब मैं वर्मा हूं ये भावना होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो वर्मा भावना करने के लिए जो करना था वो सब कुछ कर लिया उसने। तो जिसको हो नहीं रही भावना तो वो उसको करना पड़ेगा। तो संपूर्ण रूपे न पति की तरफ की भावना करनी है तो उसको सब व्यवहार करना पड़ता है। वो व्यवहार करते ही क्या अपने आप हो, क्या है वो कहना नहीं पड़ता है कि अब तुम वर्मा हो, अब तुम अब शर्मा नहीं रही हो, अब तुम्हारा घर कौन सा है, पति का घर है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा माता पिता का घर तुम्हारा नहीं है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस भावनाओं को तैयार करने का जो कुछ बखेड़ा है वो सब कुछ कर लिया, जो साधन था वो सब कर लिया। इसी तरह ज्ञानी ने जो है आत्मा में आत्म भावना करने के लिए जो कुछ करना था वो पहले कर चुका है, अब उसकी विपरीत भावना है ही नहीं है। इसलिए जिसको विपरीत भावना वो करे, किंतु ज्ञानी करने वाला नहीं है, जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? व्यर्थ है ना, जो हो चुका है उसके लिए फिर दोबारा क्या करना है, करने की जरूरत नहीं है। एक बार आटा बन गया तो उस आटे बने हुए आटे को फिर आटा बनाओ बोले नहीं ना होगा, जो पीसा है उसको क्या पीसेंगे। तो जो भावना हो ही चुकी है वो फिर दोबारा क्या भावना करनी, कोई जरूरत नहीं है। देहात्म विपर्यासम न कदाचित भजाम्य हम, जो देहात्म विपर्यास है ये तो है ही नहीं ना, इसलिए न कदाचित भजाम्य हम, अर्थात मैं जो है निधि ध्यासन नहीं कर सकता, निधि ध्यासन मुझको प्राप्त होता ही नहीं है। देहात्म जो विपर्यास है वो मुझ में है ही नहीं, न होने के कारण क्या है ये निधिध्यासन मुझको प्राप्त नहीं होता है, ऐसा क्या है ज्ञानी का है। ननु विपर्यासा विपर्याभावे अहम मनुष्य इति व्यवहार कथम घटता, ये बताइए ये जो विपर्याभाव है, चलिए विपर्य नहीं है, वो आत्मा को आत्मा ही कह रहा है, देह को देह कह रहा है, मैं ब्रह्म हूं ये उनको क्या है पक्का निर्णय है, अनुभव है, अब उनमें कोई विपर्य क्या है विपरीत भावना नहीं है। कि तो मैं मनुष्य हूं, अभी वर्तमान में अभी शरीर है उस ज्ञानी का, ज्ञानी का, अरे हम तो सब मनुष्य है, हमको मनुष्य जैसे रहना चाहिए, हाँ जानवरों जैसे नहीं रहना चाहिए, जानवरों से जैसा रहेंगे तो हम तो क्या है जानवर कहलाएंगे, अरे हम तो मानव शरीर धारण किया तो हम मनुष्य है। ये जो व्यवहार है उसके द्वारा हो रहा है, इस व्यवहार ये कैसे फिर व्यवहार होता है, उसको तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोलना चाहिए लोग के बारे में, वो क्या कहते हैं भाई हम मनुष्य है तो हम मनुष्य जैसे ही रहेंगे, मनुष्य शरीर है तो मनुष्य जैसे रहेंगे ना, हाँ तो ये कैसे, तो कहते हैं ये शंका हो गई, तो शंका का उत्तर देते हैं वासनावशात भवति इत्यतः, अर्थात संस्कार वश से क्या है इस तरह का व्यवहार होता है, उस संस्कार के कारण क्या है इस तरह व्यवहार होने मात्र से उसके अपने स्वरूप में किसी प्रकार का क्या है नुकसान बदलाव नहीं है। मैं ब्रह्म हूं ये अनुभूति होने के बाद भी यदि वो कहता है मैं मनुष्य हूं, इतना व्यवहार उस ज्ञान का बाध नहीं करता है, उसके बोध को बाध नहीं करता है, इसी के विषय में ये श्लोक आ रहा है। अहम मनुष्य इत्यादि, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्युमुम, व्यवहारो विनाप्यमुम् विपर्यासं चिराभ्यस्त विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातो वकल्पते वासनातो वकल्पते अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारों विना अपि अमुम विपर्यासम अर्थात ये कहते हैं ये जो मैं मनुष्य हूँ ये जो व्यवहार है इस व्यवहार ये व्यवहार विपर्य के कारण हो रहा है ऐसा नहीं है। बिना विपरीत भावना से भी क्या है मैं मनुष्य हूँ ये क्या है व्यवहार हो सकता है अर्थात बिना विपरीत भावना से भी व्यवहार हो सकता है। क्यों होगा भाई कहते चिराभ्यास कई काल से क्या है इस तरह का क्या अभ्यास हुआ है अर्थात वो संस्कार हुए हैं वो संस्कार के कारण क्या है वो अभ्यास के कारण मात्र मैं मनुष्य हूं ये कहने मात्र से उसके अपने स्वरूप के विषय में जो निर्णय है वो बदलता नहीं है। करे रिक्शा इधर आ जाओ रिक्शा वाले को भी पता है कि मैं रिक्शा नहीं हूं और जो बोल रहा है ये रिक्शा तो वो भी जानता है कि जिसको मैं रिक्शा बोल रहा हूं वो रिक्शा नहीं है किंतु क्या कह दिया ये रिक्शा इधर आ जाओ इतना कहने मात्र से वो आ गया ये रिक्शा कहने से आ गया तो जिसको कह दिया ये रिक्शा इधर आ जा वो व्यक्ति जान रहे कि नहीं मैं रिक्शा नहीं हूं तत्पर भी रिक्शा कहने मात्र से क्या हो गया वो आ भी गया तो दोनों को पता है रिक्शा वाले को भी पता है कि मैं रिक्शा नहीं हूं और जो बोल रहा है उसको भी पता है कि ये रिक्शा नहीं है किंतु क्या कर दिया आरोप कर दिया विपरीत कह दिया ए रिक्शा वो रिक्शा नहीं है रिक्शा तो उसके पास है जिसको रिक्शा बोल रहे हैं उसके पास रिक्शा है ना कि वो रिक्शा है किंतु रिक्शा को ही क्या उस रिक्शा के मालिक को रिक्शा कह दिया तो ये जो व्यवहार करने मात्र से क्या उस रिक्शा वाले में कुछ फर्क पड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ा बस संस्कार वश क्या है बोल रहा है किसी ने कह दिया बच्चे ने सुना पिताजी के मुख से कि रिक्शा वाले को रिक्शा बोल करके पुकार रहे तो बेटा भी क्या करता है उसका आगे चल करके ए रिक्शा इधर आ जा तो वो रिक्शा वाला भी समझ रहा है कि मैं रिक्शा नहीं हूं तत्पर भी रिक्शा कहने से वो काम कर रहा है ये व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार से उसका अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। इसी तरह वो ज्ञानी कह दिया कि मैं मनुष्य हूं अथवा उस ज्ञानी को कह दिया तो मानव है अरे महाराज आप तो मनुष्य है थोड़ा अच्छा रहिए ये गंदे क्यों रहते हो बढ़िया कपड़ा पहनिए अब वो भी कह दिया और वो भी हाँ मैं मनुष्य ठीक है भाई तो मनुष्य हूं अच्छा रहना चाहिए इतना कहने मात्र से उसने जो निर्णय किया अपने विषय में उसमें कोई बाधा आती नहीं है उसके भीतर विपरीत भावना तैयार होती नहीं है वो कहने से विपरीत भावना नहीं होती है यही कह दिया उन्होंने विपरीत भावना जरूर नहीं कि विपरीत भावना ही होना चाहिए क्या है अलग कुछ व्यवहार करने के लिए विपरीत भावना ही होना चाहिए ये कोई जरूरत नहीं है बिना विपरीत भावना से भी क्या है व्यवहार होता है। तो कहते हैं तरी अस्य व्यवहारस्य निवृत्ति सिद्धये ध्यानम संपाद्यम न चलो ठीक है मान लीजिए कि वो उनको विपरीत भावना भी नहीं है व्यवहार हो रहा है संस्कार है तो चलिए इस संस्कार को इस व्यवहार को कम करना है इतने के लिए तो ध्यान तो बनेगा ना ध्यान तो करना चाहिए क्यों इस व्यवहार को खत्म करना है मैं मनुष्य हूं ये जो व्यवहार कर रहा है इस व्यवहार को भी मिटा देना अब तो फिर क्या करना चाहिए? तरिया से व्यवहार से निवृत्ति सिद्ध ही ध्यानम संपाद्यम। उसको क्या करना चाहिए? ये जो मैं उस ज्ञानी के द्वारा ये हो रहा है कि मैं मनुष्य हूं, ये जो व्यवहार हो रहा है, अब इस व्यवहार को क्या करना है? हमेशा के लिए मिटा देना है अथवा धीरे धीरे कम करना है। तो उसको फिर क्या करना चाहिए? उसको ध्यान करना चाहिए, ऐसी शंका है। तो कहते हैं नहीं, प्रारब्ध क्षयम अंतरेण अस्य निवृत्तिर्नास्ति। ये प्रारब्ध का क्षय जब तक नहीं होता है तब तक जो सामान्य रूप से व्यवहार कर रहा है कि मैं मनुष्य हूं, ये व्यवहार प्रारब्ध क्षय होए बिना वो व्यवहार निवृत्त नहीं होगा। संस्कार है, अनंत जन्मों के संस्कार है। जब जब वो ये शरीर धारण किया, मानव शरीर धारण किया, तब तब क्या है इस शरीर को लेकर के अपने आप को क्या कहा था? मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं। ये जो संस्कार थे ये कई कालांतर से आ रहे हैं, अब वो आज क्या है, वो प्रारब्ध के रूप में आया है, वो कह रहा है। ये जो कह रहा है ना, वो उसका प्रारब्ध है। ये जो कह रहा है कहने का मूल कारण कौन है? उसका प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा वैसे वैसे अपने में मैं मनुष्य हूं ये व्यवहार क्या है, समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध क्षय होते ही वो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए ध्यान करने से काम बनने वाला नहीं है। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे, प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते, व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव, कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यान सहस्रतः, शाम्ये ध्यान सहस्रतः। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। प्रारब्ध का जो कर्म है जैसे जैसे क्षीण होता जाता है वैसे वैसे व्यवहार भी क्या उसका समाप्त हो जाता है। अर्थात इस व्यवहार को समाप्ति के लिए क्या है, प्रारब्ध की क्षीण होने की क्या है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं कहेंगे हम प्रारब्ध की प्रतीक्षा, क्षीण होने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम ध्यान से मिटाएंगे। तो यहां उत्तर देते हैं, चाहे कितना हजार वर्ष ध्यान करिए वो व्यवहार मिटने वाला नहीं है। कर्माक्षये तु असो नैव शाम्ये ध्यान सहस्रतः, ध्यान सहस्रतः क्या है, कर्माक्षये न तु, अर्थात कितना भी ध्यान करे तत्पर भी क्या है, कर्मक्षय बिना वो मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, इत्यादि जो व्यवहार है ये व्यवहार कर्मक्षय के बिना समाप्त होने वाले नहीं है। कर्मक्षय जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो व्यवहार समाप्त होगा। इसलिए ध्यान से काम बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर सकता। आगे कहता है कि ननु प्रारब्ध निमित्त कस्यापि व्यवहारस्य विरलत्वाय ध्यानम कर्तव्यम। चलिए आप कह रहे कि प्रारब्ध का जो है, प्रारब्ध जो कर्म है वो कर्म प्रारब्ध है तब तक वो कर्म होता रहेगा, व्यवहार होता रहेगा। तो चलिए हम वो कर्म क्षीण के लिए ध्यान नहीं करें कि तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रारब्ध को ही कम करने की चेष्टा करेंगे। प्रारब्ध में जो कर्म है उसको क्षीण करने के लिए आप ध्यान स्वीकार नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं प्रारब्ध को ही क्या करना है, क्षीण करना है, उसको न्यून बना देना है। हाँ, वो प्रारब्ध बन गया। फिर प्रारब्ध की जो कर्म, जो हमारे प्रारब्ध में जो होने वाले कर्म वो कह रहे उस कर्म को क्या करने, कर्म को कम करने के लिए ध्यान करो। तो उन्होंने बताया नहीं, ये जो कर्म है वो ऐसा ध्यान से क्षीण होने वाला नहीं है, जब तक प्रारब्ध है तब तक वो कर्म होता रहेगा। तो चलिए हम कर्म करने क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए ध्यान न करें, कि तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रारब्ध को ही कम कर देंगे। तो प्रारब्ध को कम कर देंगे तो प्रारब्ध वाले कर्म कहां से रहेंगे, वही कह रहे हैं। ननु प्रारब्ध निमित्तस्यापि व्यवहारस्य विरलत्वाय। तो ये कहते हैं जो प्रारब्ध में लिखा हुआ व्यवहार है, चलो वो व्यवहार तो हम कम करें, उसका धीरे धीरे कम करने के लिए ध्यान बनना चाहिए। पहला क्या था कि ध्यान किस लिए करना है, उस व्यवहार को समाप्त करने के लिए। अब ये कह रहे थे आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु उसको घटा तो सकते, कहते ना अब व्यवहार कम करो, थोड़ा भजन करो, भजन करोगे तो अपने आप धीरे धीरे क्या है, संसार के काम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब अपने गुरु कहता है अरे थोड़ा व्यवहार कम करो, महाराज जी व्यवहार हो ही नहीं पाता, कम क्या करें, तो कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा जाओ, हाँ पूरे साल भर में नहीं छोड़ सकते, तुम साल में एक आधा महीना तुम तीर्थ यात्रा करो, थोड़ा व्यवहार कम करो, उसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका व्यवहार भी छूट जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसी तरह ऐसा करो, यहां पर अपना जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध निमित्तक जो व्यवहार है, उस व्यवहार को न्यून करने के लिए, कम करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, भले आप उसको समाप्त नहीं कर सकते कि तो कम तो कर सकते ना, क्या करके ध्यान करिए तो व्यवहार बंद आपका। जब आप चार लोगों में बैठे तो चार लोगों में बैठेंगे तो व्यवहार करेंगे, तो उस व्यवहार को कम करने के लिए क्या चुपचाप कमरे में बैठ जाएगी, कोई आएगा ही नहीं आपके पास, तो अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे व्यवहार खत्म हो जाएगा। अरे मैं मनुष्य हूं ये कहने की जरूरत भी नहीं भासेगी, क्यों, क्योंकि सामने है ही नहीं कोई, तो मैं मनुष्य हूं कहने की क्या जरूरत है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई सामने होगा, भूख लगे तो अरे मुझे भूख लग गई मुझे भोजन दे दो, अब हम किसी के साथ व्यवहार ही नहीं रखेंगे, अब किसको कहेंगे मुझे भूख लग गई, चुपचाप अपने हाथ से लेकर खा लेंगे, ये व्यवहार बनेगा क्या, फिर नहीं बनेगा। तो कहते इसके लिए ध्यान करो आप, इस व्यवहार को कम करने के लिए। तो कहते नहीं, व्यवहार से अबाधकत्व दर्शनात् तन्निवृत्तये ध्यानम अननुष्ठेयम्। कहते हैं ध्यान के द्वारा वो जो प्रारब्ध निमित्तक जो व्यवहार है उसको आप कम नहीं कर सकते, क्यों, ध्यान के द्वारा उस प्रारब्ध में जो व्यवहार लिखा है, प्रारब्ध निमित्तक जो व्यवहार आ रहा है, वो व्यवहार ध्यान के द्वारा उसका बाध होता नहीं है, चाहे कितना भी ध्यान करे वो व्यवहार होकर के ही रहेगा, इसलिए ध्यान उसके लिए नहीं किया जा सकता। वो व्यवहार क्या है, अपने कर्मों को, जो प्रारब्ध में कर्म है उन कर्मों को करते करते ही क्या हो जाएगा, व्यवहार समाप्त होगा। जो प्रारब्ध में कर्म लिखे हैं उन कर्मों को करे बिना वो व्यवहार समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए उसका ध्यान नहीं बनता है। विरलत्वं व्यवहरेते विरलत्वं व्यवहरते रिष्टं चिध्यानमस्तुते रिष्टं चिध्यानमस्तुते अबाधिकां व्यवहरितिम् अबाधिकां व्यवहरितिम् पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। देखिए जिसके मान लीजिए कोई सर्विस कर रहा है, मान लीजिए कोई पुलिस में भर्ती है, अब वो पुलिस की वर्दी कब तक रहेगी, जब तक उसका जो काल कौन सा होता है, अंतम रिटायरमेंट का काल, वो जब तक समाप्त नहीं होता है, वर्दी उतरेगी क्या? नहीं उतरेगी। रिटायरमेंट हो गया, वर्दी अपने आप उतर गए, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब सर्विस है तो उसको उतार नहीं सकते, नहीं बोले उसको उतारने के लिए ध्यान करो। सर्विस का जो काल है वो काल होते हुए भी उस वर्दी को हटाने के लिए, कम करने के लिए बोले ध्यान करो तो होगा नहीं है। वो जो काल है सर्विस का, जब तक वो सर्विस का काल है, उस काल में जो कर्म है वर्दी पहनने का, वो कर्म होता रहेगा और उतने कर्म से उसको कोई बाधा नहीं है। अब उस वर्दी को पहन करके मैं पुलिस हूं जब ऐसा कहता है तो उसका जो मूल जो स्वरूप है वास्तविक, मान लो कोई शर्मा नाम का व्यक्ति क्या है, पुलिस बना हुआ है, तो मैं शर्मा हूं इस ज्ञान में कोई बाधा आती है क्या? मैं पुलिस हूं ये कहने पर मैं शर्मा हूं इस ज्ञान में कोई बाधा है क्या? नहीं। उस ज्ञान में किसी प्रकार का कोई क्या है फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद ज्ञान बाद नहीं होता। मैं पुलिस हूं ये कहने पर भी मूल रूप में मैं शर्मा हूं ये जो वास्तविक ज्ञान है, स्वरूपतः जन्मजात जो उसका स्वरूप है कि मैं शर्मा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं ये स्वरूप का बाद होता नहीं है। चाहे वो पुलिस की वर्दी पहने, चाहे 25 साल पहने, तत्पर भी कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों? अपने स्वरूप भूत का उसको ज्ञान है, मैं एक ब्राह्मण हूं, बस कुछ काल के लिए क्या है ये सर्विस के लिए वर्दी पहनी है, और इस वर्दी पहनने से क्या है एक नाम हो जाता है पुलिस। तो वो कोई पुकारता है पुलिस आइए, तो वो आता है, वो कहता आप कौन है, मान लीजिए वर्दी उतार, मान लीजिए उतार दिए, आप कौन है पता है, हमें यहां पर इस थाने में पुलिस हूं। अभी मान लीजिए वर्दी नहीं है पर कह दिया क्या है मैं पुलिस हूं। अभी पुलिस हूं ये व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो काल ही ऐसा है, वो सर्विस जो काल है वो काल क्या करेगा, उसके द्वारा ये कर्म करवाएगा मैं पुलिस हूं। किंतु जब वो काल समाप्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो मैं पुलिस हूं ये कहेगा ही नहीं। किंतु उसमें एक बात है, मैं पुलिस हूं ये कहने से मैं ब्राह्मण हूं इस ज्ञान में कोई बाधा आती नहीं है। यही बात कह रहे हैं पर विरलत्वम व्यवहरते इष्टम चेत ध्यानम अस्तुते। आपको यदि लगता है, क्या लगता है कि मैं अपने व्यवहार को क्या करना है, कम करना है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए, तो करिए आप ध्यान। विरल मतलब न्यून, कम करना है व्यवहार, कम करना है। मैं मनुष्य हूं, मैं पुलिस हूं, मैं अमुक हूं, ये जो व्यवहार है ये तो रोज व्यवहार होता रहता है, किंतु इस व्यवहार को कम करने के लिए आपको लगता है कि मैं ध्यान करने से मेरा ये जो व्यवहार कम हो जाएगा, करिए कोई बात नहीं। किंतु ये हम जान रहे कि प्रारब्ध का जो कर्म है वो कर्म ध्यान से क्या है कम होता नहीं है। आपको लगता है कि मैं भगवान का ध्यान करने से मेरा क्या बाकी का व्यवहार कम हो रहा है, अच्छी बातें करिए, किंतु ये ऐसी चीज है कि मैं मनुष्य हूं, जब मानव शरीर में है तो मनुष्य कहेगा मैं जानवर हुई तो नहीं बोलेगा ना। तो ये शरीर के साथ जो कर्म आया है, ये शरीर के साथ जो कर्म आया है वो कर्म होता रहेगा। जैसे ये शरीर के साथ कर्म क्या है, मान लीजिए बैठ के खाना चाहिए तो बैठ के ही खाता आदमी, ये मानव शरीर तो इसको कपड़ा पहनना चाहिए, मानव शरीर का कर्म है वो कपड़ा पहनेगा। ये मानव शरीर का कर्म क्या है, भगवान का भजन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये कर्म होता रहेगा, इसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि शरीर के साथ ही कर्म आया है, इस शरीर का कर्म ही है वो, ये शरीर करके रहेगा, ये शरीर जो है विचार करेगा किसी चीजों को, क्या करेगा वो विश्लेषण करेगा, ये शरीर का स्वभाव है। इस शरीर में जो भी मन आया है अपना मन, वो मन ये शरीर बराबर अपना व्यवहार करेगा, जैसे अन्य प्राणियों का जो व्यवहार है, जैसे चिड़िया है। अब उस चिड़ियों का घोंसला बनाना हमारे बस की बात, किंतु वो बना देती है, उसको तो हाथ भी नहीं है, किंतु अपनी चोंच से ऐसा घोंसला बना देती है कि हम देखते रहे, उसके घोंसले में पानी तक नहीं घुसता है। वो ऐसी व्यवस्था बना देती है, उसका जो है उस घोंसले में मान लीजिए उसको सोच आ गई तो सोच के लिए भी उसका एक अलग से छिद्र होता है, आने जाने वाले छिद्र से सोच वो नहीं करती, उसका अलग छिद्र होता है। वो ऐसा घोंसला बनाती है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूं अपने घोंसले के बाहर से तो सूर्य का दर्शन हो जाए, उसका कोई भी चिड़िया हो उसका घोंसला का जो मुख है सूर्य की तरफ ही रहता है। ये जो सब प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उस शरीर के द्वारा वही प्रक्रिया होगी, क्योंकि उस शरीर का वो कर्म है। इसी तरह इस शरीर के लिए ऐसा एक कर्म है, ऐसी एक चर्चा है, वो चर्चा इस मानव शरीर के लिए जो चर्चा होगी वो मानव शरीर के द्वारा होगी, इस मानव शरीर के लिए जो कर्म होगा वो मानव शरीर के द्वारा ही होगा। हाँ, यदि कोई जानवरों का कर्म करता है तो समझ लीजिए कि वो क्या कर रहा है, कि जबरदस्ती कर रहा हो, अपने साथ इस शरीर के साथ वो खिलवाड़ करके कर रहा है, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता। किंतु स्वाभाविक रूप से यदि वो चलेगा तो वो कोई भी आदमी इस शरीर के लिए जो व्यवहार है वही व्यवहार करता है, जानवरों का व्यवहार वो नहीं करता, क्योंकि इस शरीर के लिए जो कर्म बना हुआ है वो कर्म इस शरीर के साथ जुड़ा है, और जुड़ा हुआ कर्म इस शरीर के लिए जो व्यवहार है वो व्यवहार करके ही रहेगा, वो करवा के रहेगा वो कर्म, इसलिए उसके लिए ध्यान बनता नहीं है। अबाधिकाम विभरतिम पश्यन् ध्यायामि अहम् कुतः, मैं तो ये देख रहा हूं कि इस शरीर के लिए जो व्यवहार है, संस्कार है इस शरीर के अपने, इस शरीर में है तो इस शरीर में जैसे ही रहते हैं तो वो संस्कार है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा क्या है ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार के लिए बोलते हैं ये बात होने वाला नहीं है, इसलिए मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं, मैं ध्यान भी नहीं कर सकता हूं। विरलत्वमिति आगे कहते हैं, ध्यानस्य अकर्तृत्वेपि विक्षेप परिहाराय समाधि कर्तव्य। चलिए आप ध्यान नहीं बनता है, ध्यान करना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये सब तत्वज्ञानी की बात चल रही है, ये हम आप लोगों की बात नहीं है, ये तत्वज्ञानी की बात चल रही है। हाँ, ये चर्चा तो पूर्व पक्षी तत्वज्ञानी के विषय में कह रहा है ना, तो तत्वज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, तत्वज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, वो एक एक चीज को देख रहा है तत्वज्ञानी में, वो देख करके संशय करता है कि पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांति को, कि सिद्धांति को पूछता है ऐसा करना चाहिए, तो सिद्धांति उसका उत्तर देता है कि नहीं, ज्ञानी के लिए बनता नहीं है, युक्ति के द्वारा समझा रहे हो, वो तो साधक के लिए, तो वो जो जो कर किया है उन्होंने, जो ज्ञान होने के लिए जो जो साधना की, हाँ वो उसका साधन बनता है, अर्थात ज्ञानियों के जो साधन वो किसी क्या होते हैं, अज्ञानियों के लिए वो साधन बन जाते हैं, जो भी व्यवहार करता है वो उनका साधन बन जाता है, पर ज्ञानियों के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानी भस्म भी लगाते हैं, गले भी माला भी डालते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये मात्र क्या है, इतरों के लिए साधन है, अरे ये जैसे करते हैं हमको भी करना चाहिए, फिर वो क्यों कर रहे, संस्कार वशात, उन्होंने ऐसे संस्कार क्यों किए दृढ़ कि ज्ञान होने के बाद भी जो कर रहे हैं वो किस लिए, वो संस्कार ऐसे हो गए, तो ज्ञान के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे संस्कार बना दिए थे आपने, ऐसे अपने शरीर के मन के संस्कार बना दिए उस ज्ञान प्राप्ति के लिए, कि ज्ञान होने के बाद भी संस्कार मिटता नहीं। सुबह 4 बजे उठना, तो वो रोज उस 4 बजे किस लिए उठता था, भगवान का ध्यान करने के लिए, अपने मन के आवरण विक्षेप को हटाने के लिए 4 बजे उठना, भगवान का ध्यान करना, पूजा करना वो करता था। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद उन कर्मों से कोई बाधा आती नहीं है, वो कर्म कोई बाधक नहीं है, वो शरीर अपना करता जा रहा है। जैसे जिसको महिमन सूत्र का पाठ याद है, मन कहां जा रहा है, कि तो इधर जिह्वा बोल रही है, उसका अभ्यास है। तो उसका अभ्यास होने से वो कोई फर्क पड़ता नहीं मन इधर उधर जाने से, वो अपने आप बोलेगी, हनुमान चालीसा बोलेगा, वो मन दूसरी जगह है, इधर उधर जो है एक दूसरे को इशारा करेगा और इधर अपने मुख से उसका हनुमान चालीसा पाठ भी चालू है। तो इधर उधर मन जाने मात्र से उस जीवा को जो अभ्यास बना है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, अथवा जीवा बोल रही है उस व्यक्ति को भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी तरह ज्ञानी जब व्यवहार करता है उस व्यवहार से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यही कहते हैं ध्यानस्य कर्तव्यत्वे भी, ध्यान जो है कर्तव्य नहीं होने पर भी विक्षेप परिहार के लिए समाधि करनी चाहिए, उसको कर्तव्य मास्ते समाधि लगानी चाहिए, किसके लिए? विक्षेप का परिहार करने के लिए। तो इसका समाधान क्या है उसके विषय में हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।